ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम हंस गीता जड भरत रहुगण संवाद। परम हंस गीता श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अंतर्गत रहुगणोपाख्यान के रूप में प्राप्त होती है। इसमें परम हंस अवस्था में विचरण करते परम ज्ञानी ब्राह्मण भरत की सिंधु नरेश रहुगण से भेंट होने तथा उनके द्वारा राजा को दिए गए गूढ़ तात्विक उपदेशों का वर्णन है। भरत नामक वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सर्वदा अद्वैत भाव में स्थित रहने के कारण बाह्यतः जड़ प्रतीत होते थे, अतः उन्हें जड़ भरत भी कहा जाता है। इस गीता में 10 इंद्रियां तथा अहंकार ये 11 वृत्तियां बताई मन की बताई गई हैं, जो माया के वशीभूत होकर सुख दुख का अनुभव कराती हैं। जब ज्ञानोदय द्वारा माया का तिरस्कार कर आसक्ति को छोड़ने से आत्मतत्व का ज्ञान होता है, तब मनुष्य सुख दुख से परे हो जाता है। वह सदा परम आत्मानंद में डूबा रहता है। इस गीता में विषय वार्ता का त्याग, आत्मानुसंधान, अनासक्ति तथा गुरु एवं श्री हरि के चरणों का आश्रय ही माया से बचने के उपाय बताए गए हैं। पुनर्जन्म विषयक संक्षिप्त दृष्टांत तथा भवाटवी के विस्तृत रूपक के कारण यह गीता रोचक तथा सुबोध भी हो गई है। 5 अध्यायों वाली यह परम हंस गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है। पहला अध्याय, जड भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री शुक उवाच, अथ सिंधु सौवीर पते रहुगणस्य व्रजत इक्षु मत्स्यास्तटे तत्कुल पतिना शिबिका वाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा सहन्न नागो गोखर वद्भुरम वोढ़ुमलमिति पूर्ववृष्टिग्रहीतैः सह ग्रहीतः प्रसभ मतदर्ह उवाह शिबिकां सह महानुभावः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हृष्टपुष्ट, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाकर ले चले। यदा ही द्विज वरस्येषु मात्रावलोकानुगर गतेर्न समाहिता पुरुष गतिस्तदा विषम गताम स्वशिबिकाम रहुगण उपधार्य पुरुषानद्धि वहत आह हे वोढारह साध्वति क्रमत किमिति विषम मुह्यते यानमिति। हे द्विजवर, कोई जीव पैरों तले दब न जाए इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। अथ त ईश्वर वचः सोपालंभ मुपाकरण्योपाय तुरी याच्छंकित मनसस्तम विज्ञापयाम बभूवुः। तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दें, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, न वयम नरदेव प्रमत्ता भमन्यमानुत्पथा साध्ववेव वहामह अयम मधुनैव नियुक्तो अपि न द्रुतम व्रजति नानेन सह वोढ़ुमु ह वयम पारयाम इति। महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपके नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। सांसर्गिको दोष एव नून मेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवेतु मर हितीति निश्चित्य निशम्य कृपण वचो राजा रहुगण उपासित वृद्धो अपि निसर्गेण बलात्कृत ईशदुत्थित मन्यु रविपस्पष्ट ब्रह्म तेजसम जात वेद समिव रजसाव्रत मतिराह। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग भरे वचन कहने लगा। अहो कष्टम भ्रातव्यक्त मुरु परिश्रांतो दीर्घ मध्वानमेक एव उहिवान सुचिरम नाति पीवा न संघन नांगो जरसा चोप द्रुतो भवान सखे नो एवा पर एते संघट्टिन इति बहु विप्रलब्धो अप्यविद्यया रचित द्रव्य गुण कर्माशयस्व चरम कलेवरे अवस्तुनि संस्थान विशेषे अहम ममेत्य नध्यारोपित मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्म भूतस्तूष्णीम शिविकां पूर्व वधुवाह। अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्मरूप हो गए थे। अथ पुनः स्वशिविकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहुगण किमेदमरे त्वं जीवन मृतो मां कदर्थी कृत्य भ्रतृशासन मिति चरसि प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्सां दंड पाणि रिव जनताया यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यस इति। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणि यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। एवं बहुबद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृताशेष भगवत प्रिय निकेतं पंडित मानिनं स भगवान ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूत सुरधातात्मा योगेश्वर चर्यायां नाते व्युत्पन्न मतिं स्मयमान इव विगतस्मय इदमाह। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहनी करनी का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मण उवाच, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद्यदि गम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः। जड भरत ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वालों के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रभयम कलिरिच्छा जराच निद्रा रतिर मन्युरहम मदह शुचो देहेन जातस्य ही मे न संति। स्थूलता कृशता आदि व्याधि भूख प्यास भय कलह इच्छा बुढ़ापा निद्रा प्रेम क्रोध अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं, मुझ में इनका लेश भी नहीं है। जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यंत वद्यद्विकृतस्य दृष्टम स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईडय यत्र तरिहुच्यते असौ विधि कृत्य योगः। राजन तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हों वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। विशेष बुद्धेर विवरम मनाक च पश्याम यन्न व्यवहार तो अन्यत क ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यम तथापि राजन करवाम किम ते। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक, फिर भी राजन यदि तुम्हें स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? उन मत मत जड़ वत्स्वन संस्थाम गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थ कियान भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्ट पेशः। वीरवर, मैं मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ, मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रवादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री शुक उवाच, एता वदनु वाद परिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील उपर तानात्म्य निमित्त उपभोगेन कर्मारब्धम व्यपनयन राजयानमपि तथोवाह। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित मुनिवर जड भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। स चापि पांडवेय सिंधु सौवीर पतिस्तत्व जिज्ञासायां सम्यक श्रद्धयाधिकृताधिकारस्तदध्रदय ग्रंथिमोचनम द्विजवच आश्रुत्य बहुयोग ग्रंथ सम्मतम त्वरया वरुहय्य शिरसा पादमूल मुपस्रतः क्षमापयन विगत नृपदेवस्मय उवाच। परीक्षित सिंधु सौवीर नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो अवधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? नाहम विशंके सुरराज वज्रान्न त्रयक्ष शूलान्न यमस्य दंडात् नागन्यर्कम सोमान निल वित्ति पास्त्राच्छके भ्रशम ब्रह्म कुलावमानात्। मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि सूर्य चंद्र वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। तद ब्रूहय संगो जडवण्यगूढ़ विज्ञान वीर्यो विचरस्य पारह वचांसि योग ग्रथितानि साधो न नह क्षमन्ते मनसापि भेतुम्। अतः कृपया बतलाइए इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है। हे साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। अहम च योगेश्वरमात्मत्व विदाम मुनीनाम परमं गुरु वै प्रष्टुम प्रवत्तः किमिहारणं तत् साक्षात् धीर्यं ज्ञान कलावतीर्णम्। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। स वै भवान लोक निरीक्षणार्थ व्यक्तलिंगो विचरत्यपिस्वित योगेश्वराणाम गतिमंद बुद्धिः कथम विचक्षीत ग्रहानुबंधः। क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोकों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भरा घल में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? दृष्टः श्रमः कर्मत आत्मनो वै भर्तुगन्तुर्भवतश्चानुमन्ये यथा सतो दानय नाद्य भावात् समूल इष्टो व्यवहार मार्गः। मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। स्थाल्यग्नि तापात्पय सो अभितापस्ता पतस्तंडु लगर्भरंधि देहेन्द्रियाश्वाशय सन्निकर्षात तत्संस्रति पुरुषस्यानुरोधात। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह इंद्रिय प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रमादि का अनुभव होता ही है। शास्ताभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां यः किं करो वै न पनष्टिपिष्टं स्वधर्म मारा धनमच्युतस्य यदि हमानो विजहात्य गहुगम। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता। क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। तन्मे भवान नर देवाभिमान मदेन तुच्छी कृत सत्तमस्य कृशिष्ट मैत्री दृश मार्त बंधो यथा तरे सदवध्यानमहम। दीन बंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। न विक्रिया विश्वसुहृतस्सखस्य साम्येन वीताभि मतेस्तवापि महद्विमानात् स्वकृताद्धि माद्रंडः नक्षत्य दूरादपि शूलपाणिः। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूलपाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस गीतायाम प्रथमो अध्याय। दूसरा अध्याय, राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। ब्राह्मण उवाच। अकोविदः कोविदवादवादान् वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वममर्षेन सहामनन्ति। जड भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। तथैव राजन्नुरु गार्ह मेध वितान विद्योरु वृद्रभिष्टेषु न वेदवादेशु ही तत्ववादः प्रायेण शुद्धोनु चकास्ति साधुः। राजन, लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है। न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात वरीयसीरपि वाचः समासन स्वप्ने निरुक्त्या ग्रहमेधि सौख्यम न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। जिसे गृहस्थोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। यावन मनो रजसा पुरुषस्य सत्वेन वा तमसा वाणुरुद्धम चेतो भिराकूति भिरातनोति निरंकुशम कुशलम चेतनम वा। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से शुभ अशुभ कर्म कराता रहता है। स वासनात्मा विषयो परक्तो गुण प्रवाहो विकृतः षोडशात्मा बिभ्रत प्रथंग नाम भी रूप भेद मंत्र बहिष्टवम च पुरैस्तनोति। यह मन वासनामय विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। दुःखम सुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम कालोपपन्नम फलमाव्यनक्ति आलिंग्य माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनम संस्कृति चक्रकूटः। यह मायामय मन संसार चक्र में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। तावानयं व्यवहारः सदाविह क्षेत्रज्ञ साक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्मः तस्मान् मनोलिंग मदो वदन्ति गुणागुणत्वस्य परावरस्य। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतोः क्षेमाय निर्गुण्यमथो मनः स्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शिकाः सधूमा भजति ह्यन्यदा स्वयं पदम तथा गुण कर्मानुबद्धं वृत्तिर् मनः श्रयते अन्यत्र तत्त्वम्। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त होता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है, उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। एकादशासन मनसो हि वृत्तय आकूतयः पंच धियो अभिमानः मात्राणि कर्माणि परम च तासां वदन्ति एकादश वीर भूमिः। वीरवर, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और एक अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा पांच प्रकार के कर्म, पांच तन्मात्र और एक शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंधाकृति स्पर्श रस श्रवांसी विसर्ग रत्यत्य भिजल्प शिल्पाः एकादशम स्वीकरणम ममेति शय्यामहम द्वादशमेक आहुः। गंध रूप स्पर्श रस और शब्द, ये पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये पांच कर्मेंद्रियों के विषय हैं तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। द्रव्य स्वभावाश्रय कर्म कालई रेखा दशामी मनसो विकारा सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः। ये मन की 11 वृत्तियाँ द्रव्य यानी विषय, स्वभाव, आशय यानी संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतिर जीवस्य माया रचितस्य नित्याः आविरहिताः क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ह्यवि शुद्ध कर्तुः। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है, यह तो जीव की ही माया निरपित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्म में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियाँ प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं, जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्मात्र हैं मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात स्वयं ज्योति रजः परेशः नारायणो भगवान वासुदेवः स्वमाययात्मन्यवधीयमानः। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्म आदि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। यथा निलह स्थावर जंगमाना मात्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत एवं परो भगवान वासुदेव क्षेत्रज्ञ आत्मे दमनु प्रविष्टः। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इन संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत हैं। न यावदेतां तन्नु भ्रन्नरेन्द्र विधूय मायां वयुनोदयेन विमुक्तसंगो जितषट्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावत् न यावदेतन्मन् आत्मलिंगं संसारतापावपनं जनस्य यच्छोकमोहामयरागलोभ वैरानुबंधं ममतां विधत्ते। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि छह शत्रुओं को जीतकर आत्मतत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यों ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक मोह रोग राग लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। भ्रातव्यमेनं तदद ब्रवीर्य मुपेक्ष याध्ये धित प्रमत्तः गुरोर हरेश्चरणोपासनास्त्रो जहि वलीकं स्वयमात्ममोषम। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है, तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है, इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस गीतायाम द्वितीयो अध्यायः। जय श्री राम।